उनके प्रति श्रद्धा रखने से ये जो संसार दिखाई पड़ता है, ये जो शरीर हमारे कांटेक्ट में है, हमारे साथ हमेशा जहां हम जाते हैं वहां हमारा शरीर भी जाता है, भोगों की आकांक्षा हमारे भीतर बनी ही रहती है, लेकिन हम संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता नहीं जानते। हम संसार में ही सुख मानते हैं, शरीर की ही सेवा में लगे रहते, भोग सामग्री जुटाने के ही प्रयास सुबह से शाम तक करते हैं, लेकिन जब इनसे हम सुख चाहते हैं तो सुख मिलता कम है, ये दुख ज्यादा देते हैं। इनसे मिला हुआ सुख भी सुखाभास है जो शाश्वत नहीं है। ऐसा अपन को संसार, शरीर और भोगों के बारे में वास्तविकता का अनुभव होता है, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपनी श्रद्धा होती है, तब भी ऐसा अनुभव अपने भीतर होता, और ऐसा अनुभव होने पर फिर अपनी दृष्टि निर्मल बनने की शुरुआत होती। जिसकी दृष्टि निर्मल हो जाती उसके भीतर संसार की वास्तविकता मालूम पड़ जाने से राग द्वेष कम हो जाते हैं। हर्ष विषाद के बहुत मौके आते हैं, लेकिन वो समता पूर्वक उस हर्ष विषाद में दृष्टि से संपन्न होकर के साहस पूर्वक उन हर्ष विषाद में समता रखता है। अपन को भी अगर दृष्टि संपन्न है, दृष्टि की निर्मलता अपन को प्राप्त हो गई, तो अपने जीवन में धीरे धीरे राग द्वेष के मौके पर अपन को समता का अभ्यास या समता की साधना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की दृष्टि निर्मल होती उसके भीतर समता होती, अपन ये जानते हैं। तो अगर मुझे अपनी दृष्टि को निर्मल बनाना है तो मुझे राग द्वेष और सुख दुख के अवसर पर हर्ष विषाद न करते हुए समता रखनी है। जो व्यक्ति दृष्टि से संपन्न होता है उसके भीतर आठ बातें आ जाती हैं अपने आप। जिसके भीतर आठ बातें हों वो दृष्टि से संपन्न हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। जो दृष्टि से संपन्न है, जिसकी दृष्टि निर्मल है, उसके भीतर निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य और प्रभावना, ये आठ बातें, ये आठ गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अपन भीतर टटोल करके देखें, दूसरे को नहीं, अपने आप कि ये आठ बातें मेरे भीतर आई कि नहीं आई। अगर मैं दृष्टि से संपन्न हूं तो मेरे भीतर ये आनी चाहिए। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं सम्यक दर्शन से तो युक्त हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, लेकिन आठ में से एकाध भी बात ना हो तो फिर कैसे माना जा सकता है। और जिसके भीतर ये आठों बातें हों, जरूरी नहीं है कि उसके भीतर दृष्टि की निर्मलता हो। बहुत संभल करके अपन को इन आठों बातों का, इन आठों गुणों का या आठों अंगों का ज्ञान प्राप्त करके अपने भीतर टटोल के देखना, दूसरे के भीतर नहीं, कि ये आठ गुण तुम्हारे दूसरे के भीतर हैं कि नहीं, इसके लिए नहीं है ये कसौटी। ये अपने दृष्टि की निर्मलता को या सम्यक दर्शन को परखने के लिए कसौटी है कि मेरे भीतर वो गुणवत्ता आई कि नहीं आई जिससे कि दृष्टि निर्मल होती है, जिससे कि कोई सम्यक दृष्टि कहलाता है, जिससे कि अपने जीवन को अच्छा बनाने की दृष्टि मिल जाती। जब तक दृष्टि निर्मल नहीं होती तब तक तो यही लगता है कि अपने जीवन को अच्छा बनाना मतलब भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना, लेकिन जिसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है वो भौतिक सुख में सुख ना मान करके आत्म सुख के लिए प्रयत्न करता है, तब कहलाएगा कि हाँ दृष्टि से संपन्न है। सुबह से शाम तक अगर जो भौतिक सुखों की ही दौड़ में शामिल है हम, और आत्म सुख के लिए मंदिर तक जाने की फुर्सत नहीं है, अपने आत्म कल्याण के लिए व्रत नियम इत्यादि करने की भी जिसको फुर्सत नहीं है, शक्ति कहता है कि मेरे पास शक्ति नहीं है, तो क्या समझना चाहिए। अगर अपने भीतर व्रत नियम के प्रति भले ही ना कर पाते हों पर अपने भीतर अगर उत्साह नहीं है, मंदिर जाने के लिए अगर कोई कहता है तो क्या रखा है मंदिर में, ऐसा अपने भाव हो जाते हैं, अपना भाव मंदिर के दर्शन, भगवान के दर्शन करने के नहीं होते, तो अपने को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी अपनी दृष्टि से संपन्न नहीं है, अगर दृष्टि से संपन्न होते तो इन सब चीजों का विरोध नहीं करते। भले ही हम इन चीजों को फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम हम इन सब चीजों को इग्नोर तो नहीं करते, अनदेखा तो नहीं करते, हम इनमें इंटरेस्ट तो लेते। भले ही हम कर पाते या नहीं कर पाते, हम मंदिर आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे, लेकिन हम मंदिर जाना चाहते हैं। जो मंदिर जा रहे हैं उनकी प्रशंसा करते हैं कि भाई बहुत अच्छा है, आप तो टाइम निकाल के मंदिर चले जाते हैं, समय से जाते हैं, मैं तो जा ही नहीं पाता हूं। आप तो बहुत अच्छा है व्रत नियम कर लेते हैं, लेकिन मैं तो व्रत नियम का पालन नहीं कर पाता, मेरे पास इतना अच्छा शरीर ही नहीं है। ऐसा कहना अलग चीज है, लेकिन का धरो व्रत नियम करे में, उक्का धरो मंदिर जावे में, भी मंदिर जोन जाऊ बे भी तो लड़त है, और व्रत नियम करने वाले भी तो कषाय बहुत करते। ऐसा कह करके अपन कंसोलेशन है, अपने आप को सांत्वना दे लेते हैं कि अपन नहीं कर रहा सो अच्छो ही कर रहे है कि नहीं। इसका मतलब है कि अभी अपनी दृष्टि निर्मल नहीं हुई, अपने को ये इस तरह की अप्रोच ही अच्छी लगेगी। नेगेटिव अप्रोच है ये, जिसकी पॉजिटिव अप्रोच है, जिसकी दृष्टि निर्मल हो गई है, वो ऐसा नहीं सोचेगा। अपन भी अपने भीतर झांक के देखें कि अगर अपना ऐसा सोच है तो अभी अपने को और अभ्यास करके, साधना करके, अपने सोच को बदल करके और ठीक ठीक दिशा में सोच करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है। सबसे पहली बात है कि जब मैं वीतराग भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति और शास्त्र के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हूं, तो मेरी श्रद्धा में डमाडोल तो नहीं हो जाती, जल्दी से विचलित तो नहीं हो जाती, वो फॉर्मेबल है कि नहीं है, मुझे कोई डाउट तो नहीं हो जाता। अक्सर यह होता है कि जो कहा जाए उसको हम मानते तो हैं, लेकिन दृढ़ता हमारे भीतर नहीं रह पाती और किसी के कहने पर हमारे भीतर बहुत जल्दी संदेह उत्पन्न हो जाता है। सुना तो है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से मोक्ष होता है, लेकिन का पता होता है कि नहीं होता। अब लो, भगवान ने इतना वर्णन किया है भूगोल का, लेकिन वर्तमान के भूगोल से तो मिले ही नहीं, खाऊ का पता सही है कि नहीं। लो, ये डाउट हो गया आपके लिए, सर्वज्ञ की वाणी में डाउट हो गया। क्या हुआ आपकी दृष्टि की संपन्नता का? आपने बिना ज्ञान के ही और ऐसा निर्णय ले लिया, ऐसी धारणा बना ली? नहीं, अपने को डाउट लेस होकर के, निशंकित होकर के, इदमेव दृश्यमेव तत्त्वम् नान्यत् ज्ञानतः इत्यकम् पाय साम्भवत् सन्मार्गे संशया रुचि, ऐसा समद्भद्र स्वामी के चरणों में बैठते हैं तो वो हमें बताते हैं कि जैसा भगवान ने कहा है वो वैसा ही है। जैसे भगवान ने सात तत्व कहे हैं वे वही हैं सात तत्व, और जैसा उनका स्वरूप कहा है वैसा ही है, अन्यथा नहीं है। इदमेव ईदृशमेव तत्वम ना अन्यन ना अन्य ना च अन्यथा, अन्य भी तत्व नहीं है और अन्यथा भी तत्व नहीं है। ऐसा जैसे कि तलवार के ऊपर धार चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं लोहे का, वो निष्कंप रहता है, ऐसी ही जिसकी श्रद्धा सच्चे देवगुरु शास्त्र के द्वारा कहे गए तत्व के बारे में निशंक होती है, उसकी ही श्रद्धा सही कहलाएगी, उसकी ही दृष्टि निर्मल कहलाएगी। अपन तो छोटी छोटी चीजों में बहुत जल्दी संदेह कर लेते अपनी अज्ञानता की वजह से। अपने को क्या बुरा ज्ञान है? सोचना चाहिए, जो मैं निर्णय ले रहा हूं, जो मैं धारणा बना रहा हूं, मैं तो अज्ञानी हूं। इतना ही कह सकते हैं अपन कि भाई हम नहीं जानते, लेकिन भगवान ने जो कहा है वो एकदम सच्चा कहा है। हमारे ज्ञान में भले ही नहीं आ रहा हो, हम भले ही नहीं जानते हो, हमारा ज्ञान भले ही अल्प हो, लेकिन ये जो बात कही गई है वो पूर्ण ज्ञान के धारी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही है, अन्यथा कैसे हो सकती। सूक्ष्म दिनोदितम तत्त्वम हेतु फिर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तदग्राह्यम न अन्यथा वादिनो जिना। जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते, उनकी आज्ञा ही सरोधारी है, सूक्ष्म है उनके द्वारा कहा गया तत्व, जो हमारी बुद्धि में हमारे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जिसको हम समझ नहीं पा रहे। अपना शयोपशम कम होने की वजह से कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो ये नहीं कहना कि क्या पता क्या सो लिखो है, ऐसा नहीं। हमारी बुद्धि में नहीं आ रहा, लिखा तो सही है लेकिन हम अज्ञानी हैं, हमारे लिए समझ में नहीं आ रहा। हम थोड़ा और ज्ञान हासिल करेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। जो भी आज डाउट किए जा रहे हैं वो सब अगर अपन देखें तो अल्प ज्ञान की वजह से डाउट हैं, लेकिन सर्वज्ञ के द्वारा कही गई बात को अपन अन्यथा मान करके चलें तो वो संदेह ही हो जाएगा सर्वज्ञ भगवान की वाणी में। जो वैसे तो वास्तव में निशंकित अंग घटित होगा चौदहवें गुण स्थान में, कुंदकुंद आचार्य महाराज के चरणों में बैठे तो जो चत्तारी भी पाए छिंदतीते कम मोह बाध करे सो निसंकोचेदा सम्मादिच्छी मुणे दब्बो, उसे सम्यक दृष्टि कहेंगे जो महाव्रत से युक्त है और मुनि है, जिसने कि अपने मिथ्यात अविरति प्रमाद और कषाय इन चारों पाए जो कि कर्मबंध के कारण है इन सब को नष्ट कर दिया है, जो कि मोह को नष्ट करके बारहवें गुण स्थान में स्थित हैं, ऐसे महामुनियों के निशंकित अंग घटित होगा। अपन तपन के तो बस इतना ही कि आज्ञा जैसी है वैसा ही हमें स्वीकार है, इतना ही अपन व्यवहार से निशंकित अंग को पालन कर सकते हैं, इस गुण को अपने भीतर धारण करके अपनी दृष्टि को निर्मल बना सकते हैं। सोचो थोड़ा सा कि है क्या अपने पास जिसके बारे में अपन संदेह करें। एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है वो रास्ते से चला जा रहा है और कोई उसको बताता है कि ये वाला रास्ता सही है और वो उस पर चला जाता है, लेकिन भीतर भीतर उसके संदेह है कि क्या पता हमें सब लोग ने इस तरफ भेज दिया। वो लोगों से कहता है कि हमें ऐसे रास्ते बता दिया कहीं हम लूट ना जाए। भैया भिखारी के पास क्या है जो कि लूट जाएगा, उसे किस चीज के लूटने का डर है, किस चीज के लूटने का भय है, लेकिन क्या करें अपने पास ऐसा क्या है जिसके लूट जाने का अपन को भय है। निर्भय होकर के निशंक होकर के अपन मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। अपने पास तो थोड़े से संपत्ति भौतिक है जो कि एक न एक दिन आयु के आने पर यहीं पड़ी रह जाएगी और अपन चले जाएंगे। अगर वास्तव में अपने पास है जो कोई नहीं छीन सकता तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। कोई छीन सकता है क्या उसे? भौतिक सामग्री तो छीन सकता है, धन पैसे छीन सकता, कपड़े लत्ते छीन सकता है, मकान दुकान छीन सकता, घर छीन सकता, लेकिन मेरे सम्यक दर्शन, मेरी श्रद्धा, मेरे आत्मज्ञान और मेरे चारित्र की निर्मलता को तो कोई मेरे से छीन नहीं सकता, और जो छीना जा सके वो मेरा अपना हो कैसे सकता है। ऐसा भाव अपने भीतर में अगर आता है तो फिर संदेह की कोई बात नहीं है। एक बार क्या हुआ, विनोबा के जीवन में उनने संस्मरण लिखा कि उनको अपनी छाया से बड़ा डर लगता था, बड़ा संदेह होता था, और दूसरा उनको अंधेरे से भी डर लगता था। दो ही चीजें थी उनको। अपन तो सात प्रकार के भय से भयभीत रहते ही हमेशा, सब संसारी जीव, शायद सम्यक दृष्टि को छोड़ दीजिएगा, बाकी तो जो सम्यक दृष्टि है उसको भी थोड़े मोड़े मात्रा में सात भयों में से आंशिक रूप से रह सकते हैं। वैसे तो सम्यक दृष्टि सात भयों से मुक्त होता है, न उसको जन्म का भय है, न मरण का, न आकस्मिक, न ही लोक, न परलोक, न त्राण, न गुप्ति। ये सातों प्रकार के भय संसारी जीव को लगे ही रहते हैं, इन भयों से मुक्त करने वाली चीज अगर कोई है तो वो दृष्टि की निर्मलता है। अपन अपने भीतर झांक के देखें कि मुझे जन्म का भय तो नहीं, मैं तो जन्म मरण करता नहीं हूं, तो मुझे किस बात का भय है। अगर ऐसी दृष्टि अपनी निर्मल हो जाए तो जन्म मरण के भय से अपन मुक्त हो जाए, इस लोक में मेरी निंदा ना हो जाए, परलोक में मेरा अपयश ना हो जाए, परलोक मेरा बिगड़ ना जाए, इस तरह की चिंता, जब मैं अच्छा कर रहा हूं तो मेरा परलोक क्यों बिगड़ेगा, और जब मैं अच्छा कर रहा हूं तो इस लोक में किसी से डरने की क्या बात है, मैं सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूं। तो इस लोक और परलोक दोनों प्रकार के भय से भी हमें दृष्टि की निर्मलता मुक्त करती है, और आकस्मिक अचानक अगर कोई भय आ भी जाएगा तो किसकी क्षति होगी, शरीर की, मेरी आत्मा की तो क्षति कोई कर नहीं सकता, तो अकस्मात अगर कोई भय आता है तब भी हम उससे भयभीत अपने मृत्यु की वजह से ही होते हैं, वो आकस्मिक भय भी अपन को नहीं होगा। अत्राण और अगुप्ति भय, यहाँ पर मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, ऐसा सब सोचते हैं। लेकिन जिसकी दृष्टि निर्मल है, कौन रक्षा कर सकता है ऐसा सोचता है, मेरे परिणाम से मैं स्वयं रक्षित होता हूँ, मेरे खोटे परिणामों से मेरी रक्षा मैं अपने हाथ से स्वयं ही खो देता हूँ, मैं अपने आप को स्वयं ही पतित कर लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे सुरक्षित करने वाले, मैं चाहे जितने मकान बना लूँ पर इसके बाद भी मृत्यु से मैं सुरक्षित हो कैसे सकता हूँ। एक राजा साहब ने एक महल बनाया था बहुत आलीशान, और उसमें एक ही दरवाजा रखा था आने जाने, और उसके ऊपर भी सशस्त्र पहरा था। एक बाबा जी आए, निकले वहां से, तो राजा साहब का मन हुआ कि बाबा जी को दिखाएं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, अपना मकान ही दिखाएं। अपने भौतिक सुख दिखाने की आकांक्षा अपन को होती है वीतरागी के लिए, सोचिए, जिसने कि उन भौतिक सुखों से ऊपर उठने की साधना कर ली है उसको भौतिक सुख क्या दिखाएंगे आप। लेकिन राजा साहब का मन हुआ कि दिखाएं अपना महल, भिक्षा देते ही साथ और उनसे कहा कि बाबा जी आप मेरी भिक्षा भी प्राप्त करें, आए अंदर देखें मेरा महल। बाबा जी भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है देख लेते हैं अगर तुम्हारा मन है तो। दिखाया पूरा महल। जब बाहर आए तो राजा साहब ने अपने महल की प्रशंसा की, इतनी पुख्ता व्यवस्था है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई घुस नहीं सकता इसमें, इतने एक भी दरवाजा नहीं है ऐसा जिससे कि कोई घुस सके, इतनी व्यवस्था इतनी सुरक्षा है यहाँ पर, सब कुछ प्रशंसा कर रहा था। और दरवाजे से जब बाहर निकले तो वहां भी सशस्त्र पुलिस थी, पहरा लगा हुआ था। बाबा जी ने बाहर निकल के कहा कि ऐसा करो राजन, अभी तो थोड़ी कमती सुरक्षा है, जो एक दरवाजा है इससे कोई भी आ सकता, जी और बंद कर लो। तो राजा साहब चौंके कि अगर सब दरवाजे बंद हो जाएंगे तो कब्र में और महल में अंतर क्या रहेगा। तो राजा साहब ने कहा कि यह दरवाजा तो रहेगा, नहीं तो फिर तो मैं भीतर ही बंद हो जाऊंगा। राजा साहब अभी भी कब्र से कम नहीं है, मरोगी तो इसी में ही, चाहे दरवाजा हो और चाहे नहीं हो, एक न एक दिन आयु को कितने भी पहरे लगा दो, आयु पूर्ण हो जाने के बाद वो तो आपके दरवाजे में से प्रवेश नहीं करेगी, वो तो आपके पास बिना दरवाजे के होते हुए भी आ जाएगी और आपको मरण करना पड़ेगा। इससे आप भयभीत क्यों हैं? अपनी सुरक्षा के लिए हम कितने इंतजाम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम सुरक्षित हैं, अपने परिणामों से हम सुरक्षित हैं, अपने परिणामों से ही हम पतित हो सकते हैं, असुरक्षित हो सकते हैं। ऐसा विचार सात भयों के बारे में, एक दृष्टि जिसकी निर्मल है, दृष्टि से संपन्न है, वो ऐसा विचार करता है। मैं विनोबा के बारे में संस्मरण सुना रहा था कि उन्हें भय लगता था, संदेह होता था अपनी छाया से भी, और भय लगता था अंधेरे से। उनकी माँ ने उनके दोनों भय छुड़ा दिए। कैसे छुड़ाए? अंधेरे का भय तो छूट गया श्रद्धा से, और तर्क के द्वारा उनसे छाया का जो भय था वो छुड़ा दिया। अंधेरे में सामान लाने जाने से बहुत डरते थे विनोबा बचपन में, तो उनकी माँ कहती थी देखो मैं तो हूं, तुम अंधेरे में से फलानी चीज उठा के लाओ, और जब तुम्हें भय लगने लगे, वैसे वहां कोई नहीं है, तुम्हारे मन का है, वो जानती थी, पर अगर भय भी लगे तो तुम तो भगवान का नाम ले लेना, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमारी श्रद्धा के द्वारा हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेते हैं, भगवान जी सिद्धशिला से विराजमान हैं, वहां से आकर के हमारी रक्षा नहीं करते, हमारी श्रद्धा उनके प्रति है, उसके वजह से हम स्वयं रक्षित हो जाते हैं। तो लेकिन इतनी छोटी उम्र में उनको कहां ये बात समझ में आएगी, भगवान ही का नाम लेने से मेरे लिए भय मिट जाएगा। ऐसा वो जोर जोर से भगवान का नाम लेते हुए अंधेरे से सामान उठा लाते, दो चार दस दफे तो उन्हें थोड़ा सा लगा, लेकिन मैं भयभीत नहीं होऊंगा, मेरे साथ तो भगवान है। और माँ आवाज देती रहती, अच्छा बेटे पहुंच गए, अब लाओ उठा लाओ, आ जाओ वापस, कोई नहीं है वहां पर। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करके उनका अंधेरे का भय श्रद्धा के द्वारा समाप्त हो। एक भय और शेष रह गया, अपनी ही छाया से उन्हें भय लगता था, क्योंकि वो देखते थे कि जब धूप आती थी तो उनकी छाया उनका पीछा करती मालूम पड़ती थी, वो जहां जाते वहां छाया चली आती, ये तो नेचुरल है, लेकिन उन्हें बड़ा भय लगता। अज्ञानता की वजह से अपन को भी ऐसा ही लगता, अपन को तो उन पर हंसी आएगी कि देखो अपनी छाया से डर रहे, अपन भी तो डरते हैं। तब तर्क दे करके माने उसको भी दूर कर दिया, चिल्ला रहे थे ये कि मां बचाओ मुझे, मेरी छाया मेरा पीछा कर रही है। माने कहा आज तो इसको समझा ही देना चाहिए, अपना काम धाम छोड़ करके बाहर आई जहां विनोबा खेल रहे थे। उनने कहा अरे तू छाया से डरता है अपनी छाया से, ये तो तेरी सब आज्ञा मानती है। बोले कैसे मानती है मेरी आज्ञा, मेरा पीछा कर रही है तो मुझे बड़ा भय लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई तुम्हारी सब आज्ञा मानती है, अच्छा तुम बैठ करके देखो, वो भी बैठ जाएगी। तो जब बैठे तो सचमुच छाया भी बैठ गई, नेचुरल है वे तो, जब खड़े हुए तो छाया भी खड़ी हो गई। कहले तुम अपने ऊपर सिर पर हाथ रख लो, तो जैसे उनने सिर पर हाथ रखा छाया ने भी सिर पर। बोले तेरी सब बात मानती, जैसा जैसा तुम करोगे वैसा वैसा तुम्हारी छाया करती है, इससे तुम्हें डरने की क्या बात है। बस इस लॉजिक के माध्यम से, इस तर्क के माध्यम से उनका ये भी भय मुक्त हो गए, वो भय से न छाया का भय है न अंधेरे का भय है। इसी प्रकार अपन भी, ये तो लौकिक उदाहरण है भैया, अपन को क्या करना, अपने जीवन में भी जब इस प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं तो अपन को भी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रख के इस भय से मुक्त होने का उपाय कर लेना चाहिए। जिसकी दृष्टि निर्मल होती है वो इस प्रकार के भयों से मुक्त होकर के अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करता है, क्योंकि संदेह वो देख लेता है कि संदेह तो व्यर्थ है, संदेह करने से कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा और उदाहरण आपको सुनाऊं ताकि और बात थोड़ी सी समझ में आ जाए। निशंकित अंग पर अपने भीतर श्रद्धा के साथ साथ ये भी होना चाहिए, नहीं तो जिसने जैसा कह दिया हाँ वैसे कह तो ये ठीक रहे हैं, ऐसा अपन बहुत जल्दी मान लेते हैं। थोड़े में ही फलानी जगह चलो, भगवान के तो रोज रोज दर्शन कर रहे, कछु तो नहीं भाव, फलानी जगह चलो मुंह टेक आओ सोते तुम्हारा हो जाए कल्याण, ऐसा अपन लालच में आ करके और अपने वीतराग भगवान को भी छोड़ने तैयार हो जाते हैं और रागी द्वेषी को भी माथा झुका देते हैं। ये नरियल इसलिए नहीं मिला हुआ है कि जगह जगह आप झुकाते रहो, ये तो उसी समय उसी जगह झुकेगा जहां की वीतरागता होगी। दो ही चीजों में हमें परफेक्ट रहना चाहिए, एक और दो बस। मुझे क्या खाना, मुझे जो जिनवाणी माने खाने के लिए शास्त्र में लिखा है भक्ष पदार्थ वही खाऊंगा, ये मेरी च्वाइस है। मेरा सगा भाई भी क्यों ना हो और अभक्ष खाता है तो मैं सगे भाई को फॉलो नहीं करूंगा, मैं जिनवाणी माँ को फॉलो करूंगा, इतना मेरे अंदर दृढ़ता पूर्वक श्रद्धान है। और सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धान मेरा दृढ़ है, वीतरागता पर श्रद्धान मेरा दृढ़ है, ये माथा हर जगह नहीं झुकेगा, जहां वीतरागता होगी वहीं झुकेगा, जो कदम मोक्ष मार्ग पर जाते होंगे उन्हीं कदमों में झुकेगा। इस तरह का दृढ़ता पूर्वक श्रद्धान अपने जीवन में हो तब अपनी दृष्टि निर्मल है, ऐसा अपन कह सकते हैं, या ऐसे श्रद्धान को अपन प्राप्त कर सकते हैं जिसमें दृढ़ता हो। क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति को कार खरीदना थी। अब आजकल तो बहुत आसान हो गई कि शोरूम में जाओ वो कार ले आओ, पहले तो नंबर नंबर लगाना पड़ती थी, तो दो चार पांच साल तक जब आपका नंबर आएगा तब कार मिलेगी। 3200 रुपये में स्कूटर मिल जाती थी, अब तो अता ही पता नहीं 3200 में कुछ नहीं होता है ना नंबर से। आज का समय अलग है कि आप पैसे ले जाओ शोरूम में से, कार खरीद के ले आओ, 2-5 लाख रुपए हैं आपके पास तो आप एक कार खरीद सकते हैं। उस व्यक्ति ने उस समय में जबकि नंबर से कार मिलती थी तब सोचा कि नंबर तो बहुत देर के बाद आएगा, अपन उसके मालिक को अगर कार का दुगना पैसा दे देंगे तो शायद वो अपन को कार दे देगा। सो उसने जितने रुपए की कार आती थी उससे दुगने पैसे लिए और सीधे जाकर के उसके काउंटर पर फेंक दिए। कि आपकी कार की जितनी कीमत है उससे दुगनी कीमत, मुझे एक कार चाहिए, और बस पैसे रख करके चला गया, मेरे घर भेज देना कार। इतना कॉन्फिडेंस उसको, इतना विश्वास कि मुझे तो देनी पड़ेगी कार। उसका विश्वास देख करके वो जो मालिक था बेचने वाला, वो भी घबरा गया। उसने रुपए गिने कि भाई ऐसे तो हमने बहुत ग्राहक देखे, लेकिन दूने रुपए मुझे देकर गया और कार भी नहीं ली जिसने, कह रहा है कि भेज देना आप कार। इतना विश्वास, रुपए गिने उसने, देखा सो दूने रुपए थे, रख लिए उसने, और कार उसके घर में भेजने का इंतजाम कर दिया। कार लेकर के उसके घर में पहुंचा, लेकिन साथ साथ रास्ते में जब उसने एक बार फिर से पैसे देखे तो सारे रुपए नकली थे। अब बताओ, अब वो बड़े गुस्से में आ गया कि मैं तो सोच रहा था कि इतना ग्राहक दूने पैसे दे रहा है, मैंने उस पर विश्वास कर लिया और मैं उसको कार देने के लिए जा रहा हूँ और इसके रुपए तो सब निकली हैं, अब इसको जरूर दो बातें सुनाऊंगा मैं। दरवाजा खुलवाया, जनाब आप दूने रुपए तो दे गए और हमने आपके ऊपर विश्वास कर लिया, लेकिन आपने सब नकली दिए। तो जिसने दिए थे उसने कहा कि हमें तो कोई डाउट नहीं था कि वो नकली हैं, आप ही ने असली का डाउट कर लिया, नकली हैं ये तो हमें पहले ही मालूम था, आप मुझे बताने आए हैं कि वो नकली हैं, मैं तो ये जानता था पहले से, मुझे इस बारे में कोई डाउट नहीं था कि मैं आपको जो दूने रुपए दे रहा है, वरना ऐसा कौन बुद्धू होगा जो दूना दाम देगा और कार के लिए, ऐसा कह करके और उसको दंग कर दिया उसने कि विश्वास अगर हमारे भीतर है तो हम, आपने विश्वास किया, झूठा विश्वास कर लिया, नकली को असली मानने का विश्वास कर लिया, मैंने तो नकली को नकली मान कर के ही फेंका था, लेकिन अपन तो असली को नकली मान करके फेंक रहे हैं और नकली को असली मान करके जोड़ते चले जा रहे हैं। भौतिक सुख जिनमें की सुख नहीं है ऐसा मान करके निरंतर उनके संचय में लगे हैं, और जो आत्म सुख जो हमारा ओरिजिनल है उससे हम वंचित हैं, उसकी दिन भर जरा भी चिंता नहीं करते। अब बताइए अपनी दृष्टि बिल्कुल निर्मल और दृढ़ है या नहीं है, बनाना पड़ेगी, ऐसे थोड़ी बनेगी। धीरे धीरे जाकर के अपनी दृष्टि को निर्मल बनाने के लिए ऐसा ही पुरुषार्थ करना होगा कि भौतिक सुख सुविधाओं में सुख नहीं है, वो तो सिर्फ अपना कर्तव्य पालन करने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए मुझे थोड़ा सा अर्थ पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन इस धन पैसे इत्यादि में सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो मेरे अंदर आत्मा में है, मुझे वो प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि मैं अपने आत्म सुख को प्राप्त कर लूं। मैं सुबह से शाम तक इन्हीं भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए अपनी सांसें गंवा रहा हूं, मुझे अपनी सांस को सार्थक बनाना है, इस आत्म सुख को पा करके ऐसा निशंकित निर्भय होकर के अगर आप दृढ़ होकर के और अपनी दृष्टि को निर्बल बनाते हैं तो यही निशंकित अंग से युक्त श्रद्धान कहलाएगा। ऐसा सम्यक दर्शन जो कि निशंकित है लोक में भी, और जब आपको तत्व के बारे में कोई कुछ कहे तब उसमें भी डाउट ना हो, इस तरह अपन दृष्टि को निशंकित अंग के साथ समन्वित करके निर्मल बना सकते हैं। इसी भावना के साथ कि अपनी श्रद्धा पहले नंबर तो हो, और फिर जब श्रद्धा हो तो वो ऐसी ही निशंक हो, निर्भय होकर के, दृढ़ होकर के अपन अपने श्रद्धान के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निश
निष्कंटक पथ में विषकंटक वो ताबो
हो अर्ध निशा का सन्नाटा मन में वनचारी चरते हो
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो
करते तप शैल नदी तट पर तर तल वर्षा की झड़ियों में
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फूल झड़ियां
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां
तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां
दिन रात लुटाया करते वो शमशम की अविनश्वर मणियां
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथपंथी गुरुवर प्रणाम
उदक चंदन कंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई
धवल मंगल गान रघुभास विको भानु शिव कानी है
क्षम द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को स्वपरि पिछान वे को परम प्रमाणी है
अनुभवताय वे को जीवों के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य उरयानी है
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे यही जिन वाणी है
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो हे जिन वाणी भारती तो के जपो दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन